ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
इंट्रोडक्शन।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पैटी स्मिथ की जस्ट किड्स। ये किताब सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ बिल्कुल, ये एक दोस्ती की कहानी है, कला के लिए जीने मरने की कहानी है और एक पूरे जमाने की तस्वीर है। पैटी स्मिथ, जिन्हें हम पंक पोएट लॉरियट कहते हैं, और रॉबर्ट मैपलथॉप, वो मशहूर फोटोग्राफर।
और उनकी कहानी आज भी मतलब बहुत रेलेवेंट है। कैसे दो नौजवान अनजान शहर में मिलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं
और फिर कला की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं गरीबी से उठकर। ये हिम्मत की कहानी भी है।
सही कहा। और उनका रिश्ता, उसे आप क्या कहेंगे, रोमांस, दोस्ती या कुछ और?
यही तो खास बात है, ये सब कुछ था और शायद इन सबसे परे भी एक बहुत गहरा अटूट कलात्मक बंधन।
और आज हम इसी अनोखे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे।
और ये भी देखेंगे कि उस दौर ने, मतलब 60s और 70s के दशक के न्यूयॉर्क ने, कैसे इन दोनों को गढ़ा।
और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये एक वादे की कहानी है, एक वादा जो रॉबर्ट ने अपनी मौत से पहले पैटी से लिया था
कि वो उनकी कहानी सुनाएंगे।
बिल्कुल, और ये किताब उसी वादे की देन है,
द क्रोनोलॉजिकल जर्नी।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1967। पैटी स्मिथ करीब 20 साल की न्यूजर्सी की फैक्ट्री लाइफ छोड़कर न्यूयॉर्क आ जाती है।
हाँ, बड़े सपने लेकर, लेकिन जेब बिल्कुल खाली, कोई जान पहचान नहीं, बस एक कलाकार बनने की धुन। शुरुआती दिन तो बहुत ही मुश्किल थे।
गरीबी, अनिश्चितता, सड़कों पर सोना पड़ा, छोटे मोटे काम करने पड़े।
और तभी किस्मत से उनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट मैपलथॉप से।
वो भी उन्हीं की तरह एक जवान कलाकार, थोड़ा खोया हुआ, सपनों से भरा हुआ।
पहली मुलाकात इत्तेफाक थी, फिर वो दोबारा मिले और बस एक कनेक्शन बन गया।
हाँ, एक ऐसा कनेक्शन जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो दोनों साथ रहने लगे ब्रुकलिन के एक बहुत ही सस्ते से कमरे में, और गरीबी वो तो मतलब चरम पर थी।
किताब में जिक्र है कि कैसे वो खाने के बजाय आर्ट सप्लाई खरीदते थे।
बिल्कुल, कला उनके लिए सांस लेने जैसी थी। वो फ्रेंच कविताएं पढ़ते थे, घंटों संगीत सुनते थे और लगातार कुछ न कुछ बनाते रहते थे, पैटी ड्राइंग्स, कविताएं।
और रॉबर्ट गहने बनाते थे, कोलाज बनाते थे, अपने लिए एक मीडियम ढूंढ रहे थे दोनों।
और इसी दौर में उन्होंने वो पवित्र समझौता किया, एक अनकहा वादा,
कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे।
हाँ, और अपनी जिंदगी कला के नाम कर देंगे। ये कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, ये उनकी आत्मा का सौदा था। और कमाल की बात यह है कि उस संघर्ष ने, उस गरीबी ने उनके इरादे को और पक्का कर दिया।
फिर एक बड़ा बदलाव आया 1969 में, वो चेल्सी होटल चले गए।
चेल्सी होटल, वो तो अपने आप में एक किरदार है इस कहानी का। सिर्फ एक होटल नहीं, वो कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों का मक्का था उस जमाने में।
जैनिस जॉपलिन, एलन गिन्सबर्ग, विलियम बरोज, सब वहीं रहते थे। माहौल कैसा रहा होगा?
सोचिए जरा, एक खुला विश्वविद्यालय जैसा, हर तरफ प्रेरणा, हर तरफ कला। उस माहौल ने उन्हें बहुत कुछ दिया, एक बड़े क्रिएटिव समुदाय का हिस्सा बनाया।
यहीं उनके रास्ते थोड़े अलग होने शुरू हुए हैं ना?
हाँ, कलात्मक रूप से। रॉबर्ट को एक पोलोराइड कैमरा मिला और बस उन्हें अपना माध्यम मिल गया, फोटोग्राफी।
वो तस्वीरें खींचने लगे जो बाद में उनकी पहचान बनी, बहुत बोल्ड, बहुत पर्सनल।
जी, और पैटी, वो अपनी कविताओं को मंच पर ले आई, परफॉर्म करने लगी। गिटारिस्ट लेनी के साथ मिलकर संगीत बनाना शुरू किया। यहीं से पैटी स्मिथ ग्रुप की शुरुआत हुई।
इसी बीच उनका सैम शेपर्ड के साथ भी एक रिश्ता बना।
हाँ, वो भी एक अहम दौर था, एक गहरा रिश्ता, रचनात्मक भी, रोमांटिक भी।
और रॉबर्ट भी बदल रहे थे।
बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर वो अपनी सेक्सुअलिटी को समझ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। न्यूयॉर्क की जो अंडरग्राउंड S&M सबकल्चर थी, उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी।
ये पैटी के लिए आसान नहीं रहा होगा, यकीनन उनका रोमांटिक रिश्ता बदल रहा था।
हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका जो गहरा भावनात्मक और कलात्मक रिश्ता था, वो बना रहा, शायद और मजबूत हो गया। पैटी ने उन्हें समझा, उनका साथ दिया।
वो जानती थीं कि ये रॉबर्ट की अपनी खोज है, उनकी पहचान का हिस्सा है, और ये उनकी कला में भी झलक रहा था।
सही कहा, उनकी तस्वीरें और ज्यादा इंटेंस होती गईं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये दिखाता है कि जिंदगी के अनुभव, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, कला को कैसे गहराई देते हैं। उनका रिश्ता अब प्रेमी प्रेमिका से ज्यादा दो सबसे भरोसेमंद कलात्मक साथियों का बन गया था।
फिर आता है 1974 से 79 का दौर, सफलता का दौर।
हाँ, दोनों के लिए। अब वो अलग अलग रह रहे थे पर जुड़े हुए थे पहले से ज्यादा। रॉबर्ट को सैम वैगस्टाफ मिले, एक अमीर संरक्षक और साथी।
इससे रॉबर्ट को आर्थिक आजादी मिली है ना?
बिल्कुल, वो पूरी तरह अपनी फोटोग्राफी पर फोकस कर पाए। उनकी प्रदर्शनियां होने लगीं, काफी विवादास्पद रहीं लेकिन चर्चित भी बहुत हुईं।
और दूसरी तरफ पैटी,
पैटी ने तो जैसे पंक रॉक सीन में आग लगा दी थी। अपना बैंड बनाया, सीबीजीबी जैसे क्लब में परफॉर्म करना शुरू किया। वो क्लब बाद में पंक मूवमेंट का सेंटर बन गया।
पैटी स्मिथ ग्रुप वहां के स्टार्स में से थे, वो तेजी से एक आइकन बन रही थी।
और फिर आया 1975, उनका पहला एल्बम हॉर्सेस।
हॉर्सेस, और उसका कवर रॉबर्ट ने ही खींचा था वो फोटो।
हाँ, वो तस्वीर, पैटी एक सफेद शर्ट में, कंधे पर काला कोट लटकाए, थोड़ी एंड्रोजिनस, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो कवर खुद में एक कलाकृति है।
पैटी ने लिखा भी है, रॉबर्ट ने मुझे देखा था, मतलब उसने पैटी की असली आत्मा को कैमरे में कैद कर लिया था।
बिल्कुल,
वो कवर उनके रिश्ते का, उनकी आपसी समझ का प्रतीक है, कैसे वो एक दूसरे के विजन को समझते थे, उसे बाहर लाते थे। हॉर्सेस जबरदस्त हिट हुआ, पैटी दुनिया भर में मशहूर हो गई। तो दोनों अपने अपने आसमान में चमक रहे थे, रॉबर्ट के प्रदर्शनियां, पैटी के वर्ल्ड टूर, नए एल्बम।
लेकिन इस सारी कामयाबी और अलग अलग रास्तों के बावजूद वो एक दूसरे से जुड़े रहे, लगातार बात करते थे, मिलते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे।
ये कमाल है, अक्सर सफलता रिश्तों में दूरी ले आती है।
पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर भी थे और सबसे ईमानदार आलोचक भी। ये दिखाता है कि उनका बंधन कितना गहरा था, सिर्फ शुरुआती संघर्ष का नतीजा नहीं था।
कहानी का अगला हिस्सा दुखद है, 80 का दशक, एड्स महामारी।
हाँ, और रॉबर्ट भी इसकी चपेट में आ गए। 1986 में उन्हें पता चला। पैटी ने उस पल के शौक और दर्द को बहुत ईमानदारी से लिखा है किताब में,
लेकिन उन्होंने रॉबर्ट की हिम्मत पर ज्यादा फोकस किया है ना?
बिल्कुल, कैसे बीमारी के बावजूद रॉबर्ट ने काम करना नहीं छोड़ा, उनका संकल्प कमाल का था। पैटी उनके आखिरी सालों में लगातार उनके साथ थी, उनकी बातें, उनका एक दूसरे को हौसला देना, वो किताब के सबसे मार्मिक हिस्से हैं।
और उन्हीं आखिरी दिनों में रॉबर्ट ने वो वादा लिया,
हाँ,
पैटी क्या तुम हमारी कहानी लिखोगी? वो चाहते थे कि दुनिया उनके रिश्ते को जाने, उनके प्यार, उनकी दोस्ती, कला के लिए उनके जुनून को।
मार्च 1989 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई।
और वो वादा, उसी वादे ने जस्ट किड्स को जन्म दिया। ये किताब सिर्फ यादें नहीं है, ये एक वादा निभाना है, और ये हमें कला, मृत्यु, याददाश्त के रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है।
कोर फिलॉसफी एंड वैल्यूज।
तो ये जो पूरी जिंदगी की यात्रा है, ये सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरे विश्वास थे, कुछ मूल्य थे जो उन्हें चलाते थे। क्या चीज सबसे ऊपर नजर आती है?
मेरे ख्याल से सबसे अहम है कला के प्रति उनका वो लगभग धार्मिक समर्पण। आर्ट उनके लिए कोई शौक या पेशा भर नहीं था, वो जीने की वजह थी।
एक जुनून जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, आराम, सुरक्षा, पैसा। बिल्कुल, त्याग की भावना बहुत प्रबल थी, खासकर शुरुआती दिनों में। वो आराम से पहले कला को चुनते थे, उनका नजरिया थोड़ा रहस्यवादी भी था, जैसे वो किसी बड़ी शक्ति की सेवा कर रहे हों, कला की या ईश्वर की।
और ये विश्वास भी कि कला कहीं से भी आ सकती है।
हाँ, वो लोकतांत्रिक रहस्यवाद कि टैलेंट किसी खास वर्ग या पढ़ाई लिखाई का मोहताज नहीं है। वो खुद वर्किंग क्लास से थे, तो ये उनके लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, जिया हुआ सच था।
और प्रेरणा अक्सर अकेले नहीं आती थी, है ना? उनका रिश्ता ही आपसी प्रेरणा का उदाहरण है।
जरूर, वो एक दूसरे के लिए आईना थे, एक दूसरे को उकसाते थे बेहतर करने के लिए, और उनमें गहरी इच्छा थी गवाह बनने की।
गवाह मतलब?
मतलब अपने समय का, अपने आसपास की दुनिया का, अपनी अंदरूनी कश्मकश का। उसे सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना और फिर अपनी कला के जरिए बयान करना।
और शायद सबसे बड़ी बात, मुश्किलों को ताकत बना लेना।
हाँ, ये तो कमाल की क्षमता थी उनमें। गरीबी, आलोचना, अकेलापन, नुकसान, ये सब उनके लिए रुकावट नहीं बने, बल्कि ईंधन बन गए। उनकी कला और गहरी होती गई।
थ्री पिवोटल टर्निंग पॉइंट्स।
अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णायक मोड़ आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आप कौन से तीन सबसे अहम मानेंगी?
सबसे पहला और सबसे जाहिर है, 1967 में रॉबर्ट मैपलथॉप से मिलना।
हाँ, वो तो शुरुआत थी।
बिल्कुल, पर ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये दो कलात्मक शक्तियों का टकराना था। रॉबर्ट ने पैटी को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि न्यूयॉर्क के आर्ट सीन में एंट्री दिलाई, उन्हें वो जरूरी आत्मविश्वास दिया। उनके बिना पैटी की कहानी शायद कुछ और होती।
सही बात है। और दूसरा मोड़?
मेरे लिए वो है 1969 में चेल्सी होटल जाना।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ पता बदलना नहीं था, वो एक पूरे इकोसिस्टम में शामिल होना था। चेल्सी ने उन्हें सिखाया कि कला और जिंदगी अलग अलग नहीं है। उन्हें एक बड़ा समुदाय मिला, अकेलापन कम हुआ और उनके कलात्मक विकास को एक नई दिशा मिली। वो एक तरह का अनौपचारिक आर्ट स्कूल था उनके लिए।
दिलचस्प।
और तीसरा?
तीसरा थोड़ा दुखद है पर उतना ही जरूरी, 1989 में रॉबर्ट की मृत्यु और कहानी लिखने का वादा।
हाँ, वो वादा।
देखिए, रॉबर्ट का जाना एक युग का अंत था। पैटी का सबसे करीबी साथी चला गया, लेकिन इसी घटना ने, इसी वादे ने जस्ट किड्स को जन्म दिया। इसने पैटी को एक नए रूप में उभारा, एक लेखक के रूप में। उन्होंने अपने गहरे दुख को, अपनी यादों को एक अमर कलाकृति में बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे सबसे बड़ा नुकसान भी एक नई रचना का बीज बन सकता है।
Human lessons and reflection.
पैटी और रॉबर्ट की ये कहानी, ये सिर्फ दो कलाकारों की कहानी नहीं लगती, इसमें हम सबके लिए बहुत कुछ है ना? हाँ, बिल्कुल है। पहला सबक तो शायद एक सच्चे क्रिएटिव साथी या दोस्त की अहमियत है। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिलना जो आपको समझे, आपके सपनों में यकीन करे, आपको चुनौती दे और सहारा भी दे।
ये बहुत बड़ी बात है, और जरूरी नहीं कि वो रोमांटिक रिश्ता ही हो।
बिल्कुल, वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर। आज की इस भागती दौड़ती थोड़ी सतही दुनिया में शायद ऐसे गहरे रिश्ते और भी जरूरी हो गए हैं।
और दूसरा सबक? प्रक्रिया पर ध्यान देना।
हाँ, सिर्फ नतीजे या सफलता के पीछे ना भागना। पेलिटी और रॉबर्ट ने कला बनाने के प्रोसेस को एंजॉय किया, काम में ही संतुष्टि ढूंढी। ये याद दिलाता है कि सफर का मजा लेना भी उतना ही जरूरी है जितनी मंजिल।
उनका लचीलापन और त्याग भी सीखने लायक है, मुश्किलों से हार ना मानना।
जरूर। और एक और बात, रिश्तों को नए नजरिए से देखना। उनका रिश्ता किसी एक लेवल में नहीं बंधा था। प्यार, दोस्ती, निर्भरता, कलात्मक साझेदारी, सब कुछ घुला मिला था। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और हमें उन्हें खांचों में बांधने की जिद नहीं करनी चाहिए।
और अंत में शायद सबसे बड़ा सबक, एक प्रामाणिक जीवन जीना।
हाँ, अपने दिल की सुनना, अपने जुनून के पीछे चलना, भले ही रास्ता मुश्किल हो, भले ही दुनिया आपको न समझे। पैटी और रॉबर्ट ने यही किया। उनका जीवन बताता है कि पूरी ईमानदारी और लगन से जिया गया जीवन अपने आप में सार्थक है। ये आज भी उन लोगों को हिम्मत देता है जो अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं।
3 फाइनल टेकअवेज।
तो इस सारी बातचीत को समेटते हुए अगर श्रोताओं के लिए 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
जरूर, 3 खास बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, एक सच्ची गहरी कलात्मक दोस्ती की पवित्रता और ताकत। जब दो लोग एक साझा सपने, एक साझा जुनून के लिए जुड़ते हैं तो वो रिश्ता पारंपरिक परिभाषाओं से बहुत आगे निकल जाता है। वो प्रेरणा और हिम्मत का ऐसा स्रोत बन सकता है जो जिंदगी बदल दे।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, असली कलात्मकता के पीछे लगने वाला अनुशासन और गहरा समर्पण। हम अक्सर सिर्फ टैलेंट या प्रेरणा की बात करते हैं, लेकिन पैटी और रॉबर्ट की कहानी दिखाती है कि महान काम के लिए घंटों की मेहनत, लगातार कोशिश, त्याग और अपने विजन पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है। सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है, लगन चाहिए।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, नुकसान को, दुख को एक विरासत में बदलने की इंसानी क्षमता। जिंदगी में मुश्किलें और क्षति आती हैं, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि हम अपने दर्द को रचनात्मकता में बदल सकते हैं, यादों को कला का रूप दे सकते हैं और इस तरह न सिर्फ खुद को संभाल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ मायने रखने वाला छोड़ सकते हैं। ये अपने जुनून के प्रति सच्चे रहने के साहस की भी कहानी है।
क्लोजिंग नरेशन।
यहां एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। उन वादों के बारे में सोचिए जो हमने अपनी जिंदगी में किए हैं, दूसरों से, खुद से या अपने काम से। हम उन वादों को कैसे निभा रहे हैं? क्या वो वादे हमारी जिंदगी को उसी तरह दिशा दे रहे हैं जैसे पैटी और रॉबर्ट के वादे ने उनकी जिंदगी को आकार दिया? फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।